طيب المسؤول عليه يبقى في الدروس بجاه محمد وآل محمد.
مثلا آپ دیکھیں گے کہ کوئی
مسلط عیسائی پادری اعلان کرے گا کہ اگر کوئی لنگڑا آیا تو میں اس کو شفا دے سکتا ہوں، کوئی اندھا آیا تو میں اس کو آنکھیں دے سکتا ہوں، کیا کوئی الہی راستے میں چلنے والا بھی یہ کام کرے گا؟ میں نے کہا کہ وہ یہ کام کرے گا، ہاں ممکن ہے کہ اس سے بڑھ کر کام کو انجام دے گا، لیکن دعویٰ نہیں کرے گا، کبھی اس دعوے کو انجام نہیں دے گا۔ بدقسمتی سے دوسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ ان طاقتوں کو نہیں جانتے، ان توانائیوں کو نہیں سمجھ پائے، ان کی نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ جو خدا مطلب ہمیں پہنچانا ہے کہاں پہنچانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سمجھتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں تک خدا پہنچانا چاہتا ہے، جبکہ ہمارے سامنے روایات موجود ہیں کہ داستان بہت لمبی ہے، خدا نے کہا کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جو سادہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں، کہ جو اب تک سمجھ میں آتی ہیں ہاں یہ تو خدا یقیناً ہمارے سامنے رکھ چکا ہے، اس کو پہنچانا چاہتا ہے، پھر ایک اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ روحانی اور مانوی انداز میں خدا مطالعہ کی طرف بڑھے تو کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد کے بعد پھر دنیا اسلام کے اندر کوئی مزاحمت نہیں تھی، تقریباً कोई वक्त हमारे यहाँ मेरे शरीर के अंदर जंग आज़ादी के अंतर्धान की अयाम 1860 एक सिम्बॉलिक ईयर बनता है कि जिसके बाद फिर इम्कान नजर नहीं आ रहा था कि अब ये लोग कभी उठेंगे। ताजुब यह है कि ये जो सिलसिले और रफ्तार था कि उस दौर में अपनी मेहनत को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की कोशिश करता है बगैर कुछ कहे किसी से। मुख्तलिफ हालात में इन्होंने शागिर तरबियत की यहाँ तक कि तकरीबन 100 साल के बाद उस सिलसिले ने अपने आप को जाहिर करना शुरू किया बहुत आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन। फिर मैं कहता हूँ ये दौर बहुत खुशकिस्मत दौर है उसका 30 साल 35 साल जिसमें इन लोगों ने अपने आप को भरपूर तरीके से जाहिर किया। अलबत्ता उसके नतीजा ये हुआ कि ये तकरीबन सब लोग या शहीद हो गए या फिलहाल दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और उस सिलसिले को जो पहले माफियाना लेके चल रहे थे हर एक की उम्र बहुत लंबी लंबी उम्र थी अब हम देखते हैं कि नहीं सिलसिले शहादा ने इनमें से कई लोगों की उम्रों को उस एतबार से कम किया। शायद बाहर आने का एक नतीजा ये भी था कि इन लोगों को शहादतें देनी पड़ी और इस एतबार से शायद कहें कि पता नहीं अगली नस्ल में क्या होने वाला है। लेकिन बहरहाल अच्छा दौर था। ये जो सिलसिला है इनके कमालात बहुत अजीब है। आपने और हमने चंद चीज़ें सुनी भी हैं कि मसलन ये लोग किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुझे वो बोलना नहीं चाहिए सिर्फ मैं आपकी तवज्जो इस बात पर लाना चाह रहा हूँ कि आपके हद कहाँ पर है। कोई हद नहीं कोई भी हद नहीं। यानी मिसाल के तौर पर आपने और हमने सुना है कि ये लोग तहयस कर देते हैं कि ज़मीन पर बगैर सफ़र तय किए ज़मीन पर माती सफ़र तय किए बगैर यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। ये हमने सुना है कि ये लोग ये काम कर लेते हैं। मुस्तरद तरीन चीज़ों में मौजूद है कि ये लोग तजर्रुद कर लेते हैं। तजर्रुद किसे कहते हैं यानी अपने जिस्म को तर्क करके अपनी रूह के साथ प्रवास कर सकते हैं कहीं पर भी जा सकते हैं। और इसमें और आगे बढ़ते हैं तो तजर्रुद की हालत में अपने मादी जिस्म को लेके भी जा सकते हैं। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ये लोग कर सकते हैं और उस काम के लिए इन लोगों के ख्याल में पूरी ज़िंदगी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये चंद मराहल के बाद नसीब हो जाना चाहिए और ये हम लोगों के लिए कमाल की पता नहीं कौन सी इंतहा है। हम लोग समझ रहे हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। और कभी आप इनकी वाकयात को देखिए और इनके शागिर्दों के सिलसिलों को देखिए तो आप परेशान रह जाएंगे कि जिस चीज़ को हम ये समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कमाल है कोई ऐसा उस्ताद भी गुजरा है जिसके 300 शागिर्दों के पास ये कमालात मौजूद थे। 300 शागिर्दों के पास ये कमाल मौजूद थे जो मैंने अभी अपनी खिदमत में आ सकती। तो हद नहीं है कोई हम लोगों की अगर हम खुदा मुमताज के बताए हुए कमाल के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं फिर कोई हद नहीं है। और जो कुछ ईरान में पेश आया इस्लामी इंकलाब के हवाले से उसमें अगर आप बेगौर मुलाहजा करें तो सिर्फ उस सिलसिले और रफा को देखेंगे जिसके काम को आप देख पाएंगे। मैं जुमला खुद मैंने की जाता कि जिसने इंसानों को तब्दील किया है। मैं आज तक चलो दुनिया का कोई इल्म उस वक्त तक मुफीद नहीं है जब तक इंसानों को तब्दील ना करें न कि इंसानों के वसाइल को तब्दील करें। वसाइल तब्दील करना बड़ी चीज़ नहीं है जिसमें मैं अभी अर्ज करूँगा अपनी जगह में असल चीज़ इंसानों को तब्दील करना है। अच्छा है कि इसका थोड़ा सा पस नज़र मैं अपनी खिदमत में अर्ज कर दूँ कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की जद्दोजहद भी वसाइल की तब्दीली पर चली जाए। हमें इंसान तब्दील करने ना कि वसाइल। थोड़ी सी तशरीह अर्ज करूँगा दुरूद भेजेगा मुहम्मद वाला इंसान के अंदर ख्वाहिश है कि वो कमाल हासिल करे। पहले दिन से मैं अपनी खिदमत अर्ज कर रहा हूँ कि इंसान के अंदर बहुत सारे फितरी जज्बात मौजूद हैं जो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। खुदा मुताला ने इंसान को ऐसे खल्क़ किया है। ये जो कमाल की ख्वाहिश है शैतान भी जानता है कि इंसान के अंदर कमाल की ख्वाहिश है वो इस ख्वाहिश का मुकाबला नहीं कर सकता। जो वो कर सकता है वो ये कि उसको बस वसवसे के जरिए से मसनूई कमाल की तरफ भेजते हैं जो कमाल नहीं है उस तरफ उसको एहसास करता है। तो इंसान अपनी पूरी जद्दोजहद करता रहेगा और वो एक ऐसी चीज़ को हासिल करेगा जिसकी कोई कीमत नहीं थी जिसकी ज़्यादा कीमत नहीं थी। मसलन अपने तौर पर मैं सोचता हूँ अगर आइंस्टाइन जैसे लोग वाकई जीनियस थे और उनको पता होता कि असल कमाल क्या है तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर इक्तफा नहीं करते कुछ और करते। इनको पता नहीं चल पाया असल कमाल क्या या मुखलिस नहीं थे या पता नहीं चल वरना ये यहाँ भी नहीं रुकते, ये फिजिक्स पे इतफा नहीं करते, ये फिजिक्स से बहुत आगे रहते हैं। तो इंसान के अंदर कमाल की ख्वाहिश को शैतान ने मुनहरिफ किया है और उस इनहराफ के नतीजे में जो चीज़ हासिल होती रही वो ये कि इंसान मेहनत करता रहता है अपने वसाइल को तब्दील करे, अतराफ में जो नेचर मौजूद है इस पर अपने कंट्रोल को बढ़ा रहे, जो इंसान की पूरी ताकत लगती है वो इसी पर लगती है। अब मिसाल के तौर पर जो कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जद्दोजहद होती है वो क्या हो रही है, अब मैंने इतनी आसानी से कह दिया क्या हो रही है, हज़ारों साल से हो रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, अपनी कुछ चीज़ों को मुख्तसर वक्त में करना चाहते हैं, तेज़ी से करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गर्मी है तो चाहते हैं सर्दी हो जाए, ये हमारी कामयाबियों में से एक कामयाबी है, अगर गर्मी है तो सर्दी चाहते हैं, सर्दी हो तो गर्मी चाहते हैं। हमारी कामयाबियों में से एक कामयाबी ये है कि 6000 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में तय करें, ये हमारी कामयाबी। हमारी कामयाबियों में से एक कामयाबी ये है कि जिस्म को हम मरीज करें तो बाद में उसको सही कैसे करें, हम खुद मरीज करें फिर बाद में उसको सही कैसे करें। हमारी कामयाबी में से एक कामयाबी है कि अल्लाह की ज़मीन वसी है लेकिन हमें आसमान में घर बनाना है, और कितने ऊँचे घर बनाए जबकि अल्लाह की ज़मीन नीचे भी बहुत वसी है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन एक खप्त है ऊपर जाने का और उस खप्त के तहत आसमान में घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा 100 मंजिल बनाते हैं, 110 मंजिल बनाएंगे, 200 मंजिल बनाएंगे, ज़रा कोई इससे पूछे ज़मीन के ऊपर कोई कमी हुई है क्या, कहाँ कमी है। इन सब को शैतान करता कैसे है, ये जो सादा सादा सी बातें हैं इनमें इंसान फंसता कैसे है। मैं एक बहुत आम फहम से मिसाल अर्ज करूँ कि हम इंसान बालोकात किस तरीके से बेवकूफाना अंदाज में फंस जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि बालोकात क्या हो रहा है, जिसमें से एक पहलू मैंने अपने लगभग में मिसाल के तौर पर अर्ज किया कि हमारे पास जमीन के ऊपर कमी नहीं है तो हम आसमान में क्यों जा रहे हैं, और आसमान में जाने की कॉम्प्लिकेशन आपको पता है कि अगर आप एक इमारत खड़ी करना चाहते हैं जो 120 मंजिला हो और अगर उसको आसमान में ना लेके जाए उसको ज़मीन में रखें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन उसको आसमान में पहुंचाने की कॉम्प्लिकेशन वो आपके सामने मौजूद है। इसी तरह 10 चीज़ें, क्या वाकई हमारी दुनिया के अंदर पावर की कमी है, एनर्जी की कमी है हमारे पास, क्या वाकई हमारी दुनिया के अंदर खाने की कमी है, किसी सूरत में नहीं है, दुनिया की कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं कह रही कि हमारे पास रिस्क की कमी है, दुनिया की किसी स्टैटिस्टिक्स में नहीं है कि रोए ज़मीन के ऊपर जो 6 अरब इंसान हैं इनके पास खाने की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं है, कमी सिर्फ इस बात की है कि जो बन रहा है ये तकसीम कैसे होगा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन। और जो खुदा नुकता ने इशा फरमाया शहीद सदर ने अपनी किताब में उसको बहुत खूबसूरत बयान किया है, इंसान ज़ुल्म कफ़ार, इंसान जुल्म करता है कुफ़्रान नेमत करता है, जुल्म ये करता है कि जो कमाता है उसे तकसीम नहीं करता और कुफ़्रान नेमत ये करता है कि जो खुदा नेमत देता है उससे इस्तेफादा नहीं करता, ये इंसान के साथ है। जो कुछ हमारी गलती है वो इन दो के अंदर छुपी हुई है, या हमने जुल्म किया है या हमने कुफ़्रान नेमत की, वरना हमारे पास कभी कोई कमी नहीं है। आप यकीन फरमाइए जो पाकिस्तान में इतना इशू है पावर का, इतना मसला है बिजली का और इसका उसका, अगर कोई थोड़ा सा सोचना शुरू कर दे सिवाय हिमाकत के कुछ नहीं है, मैं आपको मुतमईन होकर रस करूँ सिवाय हिमाकत के कुछ नहीं, और अगर मेरी स्पेशलाइज स्पीड नहीं है कि मैं इसके ऊपर बहुत ताकीद के साथ रस कर पाऊँ, लेकिन आप खुद जानते हैं यहाँ से हिमाकत हो रही है, धोखा दे रही है, वरना हर दिन ऐसी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी हमको। बहर इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, शैतान इसका हम कैसे कर देता है कि इंसान इस मुश्किल में फंस जाता है, वो यूँ दिखाता है जैसे कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, यही बस एक ऑप्शन है, बस सादा सा काम ही करेगा कि जो असली हल होगा उसको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से बाहर निकाल देगा। अब जो वो चाहता है ओनली ऑप्शंस यही रह जाएंगे। अच्छा, अब उसने क्या किया, इंसान के अंदर मादी तरक्की भी हो सकती थी मानवी तरक्की भी हो सकती थी, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से मानवी तरक्की को बाहर निकाल दिया। दुनिया के सामने जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि मादी तरक्की कैसे हो। अच्छा, अब पहले मरहले में तो ये था कि भाई 2 चैप्टर्स हैं मादी और मानवी, आपने मानवी में जाना है या मादी में जाना है।
कि भाई हम मानवीय में नहीं जाएंगे, हम मादी में जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता उस मादी तरक्की को इतना ज़्यादा एम्फेसिस दिया, इतना ज़्यादा ताकीद की कि अब जब कहा जाता है तरक्की तो लोग सोचते ही मादी ख़त्म, अब वो ऑप्शन है ही नहीं। मसलन आप दुनिया में कहीं पर भी डेवलपमेंट एक सब साइंस है जो इकोनॉमिक्स में भी आती है, पॉलिटिक्स में भी आती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी है। दुनिया के किसी भी सिलेबस के अंदर, करिकुलम के अंदर जाकर आप पूछ लीजिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अगर इकोनॉमिक्स की है उसकी डेवलपमेंट देख लीजिए, पॉलिटिक्स की है उसकी डेवलपमेंट देख लीजिए, किसी एक में पूछ लें मानवीय डेवलपमेंट इसका हिस्सा है क्या, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट असल आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये है ही नहीं असल बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा जो आएगा, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि मसल मेरी तवज्जो उस पर नहीं है, मसल शायद आएगा ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर डेवलपमेंट। अच्छा, वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर डेवलपमेंट है वो भी सारी की सारी इस बात पर है कि इंसान कैपिटलिस्ट मशीन का अच्छा पुर्जा कैसे बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उस सारी डेवलपमेंट का सिर्फ एक हदफ होता है, ये हमारी मशीन में अच्छा पुर्जा कैसे बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनको इसके अलावा किसी डेवलपमेंट से कोई सरोकार नहीं। अच्छा, अब इस फरेब को इतनी ताकत से दिया है कि किसी के जहन में सवाल दूसरा आएगा ही नहीं, और उसकी बहुत सादा सी निशानी है। मैं आपके सामने दो शहर बयान करता हूँ, दो शहर के औसाफ बयान करता हूँ, देखिए आपके साथ इसके नतीजे में आपके जहन में क्या बनेगा। दुरुद भेजेगा मोहम्मद
اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احرام مصر بنے ہوئے 4,000 سے 5,000 سال ہوئے ہیں اور جو ٹیکنالوجی اس کے اندر استعمال ہوئی ہے وہ ہسٹری آف ٹیکنالوجی میں مس میچ ہے. اس کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو کہیں اور ہونا چاہیے تھا. ایکچولی وہاں پہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے تھا, کئی ہزار سال پہلے آگے کی طرف ہونا چاہیے تھا اس کو. اور اگر یہ تصور کریں کہ یہ 8,000 سال پہلے بنے ہیں تو پھر تو بالکل ایکسیپشنل نہیں ہے. لہٰذا بعض لوگ کہنے لگے کہ اس کو خلا سے آنے والی کسی مخلوق نے بنایا ہوگا, چونکہ زمین کے اوپر جو ٹیکنالوجی کی گروتھ ہے اس کے اندر تو یہ نہیں آتی ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کوئی کوئی چیز ہو رہی ہے, کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے, دھوکہ ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. انہوں نے ہمارے سامنے ایک آپشن رکھ دیا ہے, وہ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ, یعنی مادی ڈیولپمنٹ. ترقی یافتہ کون کون سی ہے؟ جس کی سڑکیں چوڑی ہیں, جس کی بلڈنگ اونچی ہیں, جس کے اندر سیمنٹ اور سریا بہت استعمال ہو جائے, وہ ترقی یافتہ ہے. وہ ضروری ہے, کوئی قوم کچے گھروں میں رہ کے ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی کیا؟ یہ ہمارا ذہن قبول نہیں کر رہا. کچا گھر ہو ترقی یافتہ نہیں قبول کر رہا. اب میں خدمت میں عرض کرتا ہوں, اب تک کی جو منسٹری ہے, اب تک کی منسٹری ہے, اس میں آپ کے نزدیک ترقی یافتہ ترین معاشرہ کون سا ہے؟ آپ کے نزدیک آپ کس معاشرے کہیں گے؟ دنیا کے اعتبار سے عرض کر دیتا ہوں, دنیا کے اعتبار سے اس وقت ترقی یافتہ ترین معاشرے ویسٹ کے اندر ہیں. مثال کے طور پر اگر اچھے سوشل سروسز کی بات کی جائے تو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں. مثال کے طور پر 8 سال سے ناروے اس کے اندر ٹاپ پہ جا رہا ہے. تو آپ کے اور ہمارے ان اسٹینڈرڈس کے اوپر ناروے اس وقت دنیا کے اچھے ترین ملکوں میں سے ایک, 8 سال سے ٹاپ پہ. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو دین خدا کے ماننے والے ہیں, اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, آپ کے نزدیک جو اب تک کی ترقی یافتہ ترین سوسائٹی ہے وہ کون سی تھی, جس کو آپ گولڈن سوسائٹی کہہ سکتے ہیں؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں نظریے کے اندر فوراً جا کے دیکھنا پڑے گا جنگ بدر کو. شاید ترقی یافتہ ترین سوسائٹی اس زمانے میں کہیں تشکیل پائی. کیوں؟ جتنی اللہ کی نصرت جنگ بدر میں آئی ہے اتنی کم کسی معاش پہ آئی ہے. اگر وہ اللہ کی نصرت پہ ترقی یافتہ نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ نے اپنی نصرت کیوں بھیجی تھی؟ آپ رسول اللہ کے دور کو سنہری دور تعبیر کرتے ہیں, مولانا مومنین کے دور کو سنہری دور تعبیر کرتے ہیں. کیا وہاں پہ پکی عمارتیں تھیں؟ چھوٹی سڑکیں تھیں وہاں پہ؟ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ترقی یافتہ آپ کی فکر کے تحت بنتے ہیں؟ اب ابھی عراق تشریف لے جائیے, اور عراق تشریف لے جائیں گے آپ, وہاں کے مقدس ترین مقامات کو وزٹ کیجیے, اور اس کے جو مقدس ترین مقامات ہیں یہ وہ مقامات ہیں جو گزشتہ کم از کم 6,000 سال سے مقدس ترین مقامات ہیں. مثلا مسجد سہلا, مثال کے طور پر خود کوفے کے اندر مختلف مقامات, یہ جو مختلف قبرستان ہیں وہاں پر, یہ سب مقدس ترین مقامات ہیں. کب سے؟ حضرت نوح کے زمانے سے. یہ پکی سڑکوں پر ہیں اور پکی عمارتوں پر ہیں, کچے نہیں سر. پھر یہ ترقی یافتہ ہے یا غیر ترقی یافتہ ہے؟ ہمارے اسٹینڈرڈس میں یہ مہذب نہیں ہے, اس کی وجہ کہ سب کچے. اب مسجد سہلا چلے جائیے, اب وہاں پر اس مسجد کی کنسٹرکشن میں, ٹیکنیک میں, ٹیکنالوجی میں, مٹیریل میں اس کو کسی بھی طور پر ترقی یافتہ نہیں کہیں گے. اللہ اس کو ترقی یافتہ جگہ کہہ رہا ہے. خدا قدیم مانتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے, ورنہ آپ وہاں پہ پڑھنے کے لیے کیوں گئے؟ آپ اسلام آباد چلے جاتے ہیں, ماڈرنائز مسجد کے اندر آپ نے کیوں نہیں نماز پڑھی؟ یہ سب باتیں ہمیں بتا رہی ہیں, ہم لوگ ڈیفائن نہیں کر پا رہے اپنے کام کو, ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے. لہٰذا ہمارے نزدیک ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ترین شخص کون سا ہے؟ جس نے ویسٹ کی بہترین یونیورسٹی سے ڈگریز حاصل کی, وہ تعلیم یافتہ ترین انسان ہے. کوئی گارنٹی ہے کہ ہمارے نظام فکر کے اندر وہ تعلیم یافتہ ترین انسان ہے؟ یہ وہ پرابلمز ہیں جو ہمارے سامنے آ گئی ہیں. یعنی ہماری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا, سوسائٹی جب چینج ہوتی ہے تو کچھ چیزوں میں احکام میں تبدیلی آتی ہے, کچھ عادتوں میں تبدیلی آتی ہے. بدترین تبدیلی وہ ہوتی ہے جو ویلیوز میں تبدیلی آ جاتی ہے. ویلیوز کی تبدیلی بدترین تبدیلی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں تک پہنچتے ہم جو دیندار ہیں ہماری ویلیوز میں کیا تبدیلی آئی ہے. ہم تمام تر دینداری کے باوجود اپنے کمال کو ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے, اپنے کمال کو تقریباً وہیں پہ سمجھ رہے ہیں جہاں پر انہوں نے ہمارے لیے
کمال طے کیا ہے. اس کو میں کہتا ہوں فرعونیت ہے, یہ مغرب کی فرعونیت ہے. فرعون کیا ہے؟ فرعون قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, وہ کہتا ہے ماں علم تو لکم من الہ غیری, میں تمہیں بتاؤں گا خدا کون سا ہے اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, ختم ہو گیا معاملہ. تمہارے دماغ میں طاقت نہیں کہ تم یہ طے کرو کہ خدا کون ہے. وہ ہمارے لیے سب کچھ طے کر رہے ہیں, وہ فرعون بن کے سب کچھ طے کر رہے ہیں کہ تمہارا کمال یہ ہے کہ تم ہماری یونیورسٹی سے پڑھو گے, تمہارا کمال یہ ہے کہ جب تک تم ہمارے تحقیقی ادارے سے سند نہیں لو گے تم نہیں لو گے, اس کا مطلب ہے تمہارا کمال یہ ہے کہ تم کتاب بھی لکھو تو ہمارا ادارہ چھاپے گا تو تمہاری کتاب مستند ہے, ورنہ تمہاری کتاب بھی مستند نہیں ہے. سب کچھ ان کے حق میں, یہ فرعونیت نہیں ہے. اس کے بعد کمال یہ کیا فرعونیت کا کہ تمام تر تاریخ, تمدن, تہذیب سب کا آغاز ہم سے ہوا, تم تو صرف جاہل ہو, تم بس کچھ ہے ہی نہیں. ایسا ہی ہے, مغربی تہذیب کتنی پرانی ہے. مغربی تہذیب شروع ہوتی ہے مثلا روم اور یونان سے, ان کی تاریخ 2500 سال سے 3000 سال تک ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. جبکہ ایران, چین اور ہندوستان کی تاریخ کم از کم 4000 سال پر ہے. تو تہذیب وہاں سے کیوں نہیں شروع ہوتی پھر, تمدن وہاں سے کیوں نہیں شروع ہوا. اور اس کے بعد جب انوینشنز کی بات کرنا شروع کریں گے تو ہم تھے جس نے یہ کیا, اور پیچھے جا کے اعتراف کریں گے نہیں پچھلی قوموں نے بھی کچھ کیا تھا, اس کو کوئی اعتراف نہیں ہے. یہ فرعونیت ہے, یہ انہوں نے ہمارے اسٹینڈرڈس کو ہم سے چھین کر اپنے اسٹینڈرڈس کی صورت میں ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے کہ آپ ہمارے اسٹینڈرڈس پہ چلیں گے. ہر چیز کو طے کر رہے ہیں ہمارے لیے, میں نے عرض کیا یہاں تک کہ ترقی اور کمال کو بھی وہ طے کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ آپ کی ترقی یہ ہوگی, آپ کا کمال یہ ہوگا. اور ہم لوگ ان کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈس میں اتنا پھنس گئے ہیں کہ اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے. جب تک ہم یہ نہ کریں اپنی بنیادوں پہ خود سوچنا شروع کریں, میں جو اب تک آسان ترین راستہ سمجھ پایا اس سلسلے میں چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ موجودہ دنیا کے بہت سارے اسٹینڈرڈس میں دھوکہ ہو رہا ہے, وہ خدا کچھ دیتا ہے کہ کچھ اور دے دیتے ہیں, اور جو یہ دے دیتے ہیں اس کو حاکم کر دیتے ہیں ہمارے اوپر. اب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد ہر اسٹینڈرڈ پہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ جو اسٹینڈرڈ انہوں نے دیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا. اس کا ایک راستہ ہے, اس کا ایک راستہ یہ ہے آپ بجائے یہ کہ کسی کے بنائے ہوئے سیٹ آف پرنسپلس کو یا اسٹینڈرڈس کو ایکسیپٹ کریں, اپنے ذہن سے خود اپنے دین کے بارے میں سوچنا شروع کریں. اس کا راستہ کیسے ہوگا, میں ایک سادہ سی مثال ٹیلی ویژن اور اس کے فحاشی کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں. آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر ممکن ہے ہم میں سے کوئی یہ کہے گا کہ بھائی فلمیں دیکھنا تو غلط ہے, فلمیں دیکھ رہا ہوں, لیکن ڈرامے دیکھنے میں کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ ممکن ہے وہ یہ کہے گا. یا مثال کے طور پر کوئی کہے گا نہیں فلمیں اور ڈرامے یہ تو سب غلط ہے, باقی سب صحیح ہے, باقی کیا برائی ہے. بس آپ کہیں گے کہ نہیں میوزک تو اس میں بھی آتا ہے, بھاشا تو اس میں, اتنا تو ایکسیپٹیبل ہے, اتنا تو چلے گا. اچھا اب میں اس ڈر سے کہ یہاں تو سب کچھ چلے چلا جا رہا ہے اور سب کچھ ایکسیپٹیبل ہوتا چلا جا رہا ہے گزشتہ 25-30 سال کے اندر کم از کم, تو میں نے اس کا ایک حل یہ نکالا کہ ٹھیک ہے ہم بجائے یہ کہ یہ دیکھیں کہ آج کا معاشرہ کیا ایکسیپٹ کر رہا ہے جس کے اسٹینڈرڈ کا ہمیں شک ہے کہ یہ سب غلط ہے, ہم سادہ سی بات سوچیں اگر یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا تو ایکسیپٹیبل تھا, تب بہت ساری چیزوں میں مدد ملتی ہے یہ سمجھنے میں کہ دھوکہ کہاں ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پر سادہ سی بات سوچتے ہیں, مثلا ایک نیوز ریڈر خبریں پڑھ رہی ہے, تھوڑا بہت میوزک بھی بجتا ہے, لباس بھی مناسب نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں ایکسیپٹیبل ہے. اچھا میں صرف اپنے ذہن کو سمجھانے کی خاطر یہ سوچتا ہوں کہ یہی تصویر مدینہ کے ایک چوراہے میں رکھ دی جائے اور اللہ کے رسول نے وہاں سے گزرنا ہے, اب ایکسیپٹیبل ہے نہیں نہ ایکسیپٹیبل, تو اب کیوں ایکسیپٹیبل ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نظر نہیں آ رہے. یہ ہمارا دھوکہ ہے, یہ ہمیں دھوکہ ہوا ہے. آپ اپنے اسٹینڈرڈ کو اس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں कि स्किप कीजिए 1400 ईयर्स को, इसको बीच से निकालिए, मुत्तसिल करते हैं मासूमीन से, अब पूछें क्या सही है और क्या गलत है, अब बताएं सही है गलत है। आप अपने लिबास को देखना चाहते हैं, भाई ये जो मैंने लिबास पहना हुआ है ये सही है गलत है। एक दफ़ा मसला होता है उसका डिज़ाइन क्या है, एक दफ़ा मसला क्या होता है कि हमने पैंट शर्ट पहनी है या मिसाल के तौर पर कमीज शलवार पहनी है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। एक दफ़ा ये होता है कि आपने इस्लामिक स्टैंडर्ड्स पर कॉम्प्रोमाइज़ किया या नहीं किया है। तो बहुत सादा सा काम है कि जहाँ पर आपको शक हो रहा है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर दिया, उसको आप मासूमीन के सामने रख के सोचिए और पूछिए अब एक्सेप्टेबल है ये, फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वाजे हो सकेंगी। मिसाल के तौर पर मैं अपने तौर पे सोचता हूँ कि एक आदमी है जो उस दौर के इंतहाई आला पाए के उलूम का माहिर है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के रसूल के लिए एक्सेप्टेबल है, हमारे लिए क्यों है? हमारे लिए का मतलब नहीं कि मैं दूसरों के बारे में बर्थडे इशू करूँ, अपने बारे में कह रहा हूँ, हमें किसने खाने किया कि हम एक्सेप्टेबल हो गए, हम कैसे खबर कबूल हो गए? आप इस तरह सोचना शुरू कर दीजिए। अब ताज्जुब से मैं बाज़ औक़ात वाकई ताज्जुब होता है कि अल्लाह के रसूल ने बाज़ ऐसी जगहों पर नॉर्मल एक्सेप्ट स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जहाँ पर अकल कह रही थी ज़ाहिरी अकल कि कर लेना चाहिए था। मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारे स्टैंडर्ड्स कितने दूर चले गए, हम कितनी दूर चले गए। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए मजलिस से पहले या मजलिस के बाद किसी ने ऐलान करना है, किसी ने कोई ऐलान करना है, आप उस ऐलान करने वाले में क्या क्वालिटीज देखना चाहेंगे, क्या क्वालिटीज देखना चाहेंगे? बस आप उसके अंदर क्वालिटी ये देखना चाहेंगे कि वो जिस जबान में ऐलान करे वो जबान उसको सही आती हो, जबान सही आती है, उसकी आवाज़ माकूल हद तक अच्छी आवाज़ हो, माकूल हद तक अच्छी आवाज़ हो, शक्ल व सूरत का अच्छा हो तो बेहतर है, शक्ल व सूरत का अच्छा हो कि जब खड़ा होगा तो ज़रा एक और वक़ार नज़र आएगा, लिबास मुनासिब हद में होना चाहिए, ज़रा स्टैंडर्ड्स में कम से कम मुतवस्सित दर्जे में तो हो, ठीक है। तो उसकी जिस जबान में अनाउंसमेंट हो रही, ठीक है, अगर इंग्लिश में अनाउंसमेंट है तो इंग्लिश उस पर अच्छी आती है, उर्दू में अनाउंसमेंट है तो उर्दू अच्छी आती है, ये होना चाहिए। मसलन आवाज़ नस्बतन बेहतर होनी चाहिए, तीसरी बात थी कि लिबास अगर शक्ल मुनासिब हो सकती है तो हो जाए, लिबास कम से कम मुनासिब होना चाहिए, सही। इन सब के साथ हमारे नज़दीक एक आदमी बन जाता है, उस आदमी का स्टैंडर्ड बन जाता है जिसने कोई अनाउंसमेंट करनी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अनाउंसमेंट के लिए ज़रूरी है कि मुत्तकी हो, तो आप कहेंगे कि इसमें चंदा ज़रूरत एहसास नहीं हो रही क्योंकि आवाज़ ही निकालनी है ना बस, भाई ठीक है आवाज़ ही तो देनी है, इसने आना है स्पीकर पे कहना है ये होगा, ये कहना है आप तशरीफ लाइएगा, बस ये कहना है। अल्लाह के रसूल ने आपके चारों स्टैंडर्ड्स को कबूल नहीं किया, हजरत बिलाल से कह दिया तुम अनाउंसमेंट करो, जिसकी उर्दू अच्छी हो, क्योंकि उर्दू में बात हो रही है, सही, जो खिताबत में कम से कम इतना करे कि पब्लिक को अट्रैक्ट कर ले, अगर जौहर ना भी दिखा सके, अगर जौहर दिखाए तो क्या बेहतर कि मसलन खिताबत ठीक ठाक आती हो तो ये बेहतर है, नहीं आती कम से कम इतना तो हो कि वो पब्लिक को समेट के लेके चल सके। दो बात और क्या देखना चाहेंगे आप, लिबास वज़ाफ़ता में मुनासिब, वज़ाफ़त है मुनासिब, ये मैं अच्छों की बात कर रहा हूँ, अच्छों की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा जो ये कह रहा हूँ कि गाड़ी भी मुनासिब होनी चाहिए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छों की बात कर रहा हूँ। अच्छे ये कहेंगे कि उसकी ज़बान अच्छी होनी चाहिए, अगर ज़बान अच्छी नहीं हो तो क्या चलेगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर 20 साल पहले होते तो सिर्फ एक चीज़ थी, खिताबत आती बस। और तो 20 साल में हम थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल पर पहुँच कर अब यहाँ आए कि अब हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ज़बान ठीक ठाक आती हो, अच्छी आती हो, जितनी ज़बान अच्छी होगी, शुस्ता होगी, फंसी होगी, हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, खिताबत इतनी आती हो कि पब्लिक को अट्रैक्ट कर ले कम अज़ कम। ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसको सुनकर लोग परेशान होना शुरू हो जाए, नहीं होनी चाहिए। तकवा परहेज़गारी कितनी चाहिए, इतना हो कि हमारे सामने गुनाह करता नजर ना आए, बस काफी। बस पीछे करता है ठीक है कर ले, हमारे आंखों के सामने ना करे, बस इतना। अल्लाह के रसूल ने ये एक्सेप्ट किया था और अब इसको मेरे रसूल कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने मुआज़िन के लिए भी एक्सेप्ट नहीं किया था, मेंबर तो छोड़ दीजिए, मुआज़िन के लिए जिसका काम खिताबत करना नहीं है, मुआज़िन का काम है रटे रटे जुमलों को उसी तरतीब से जो पहले से तय हुए हुए अदा करना है। उसने अपनी तरफ से जेर जबर की भी कोई गुस्ताखी नहीं करनी, उसके लिए अल्लाह के रसूल ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे ज़बान पे ताकीद करनी है, चेहरा देखना है, लिबास देखना है, कौम नस्ल कबीला देखना है। एक ऐसे आदमी को भेज दिया जिसकी अनाउंसमेंट ही सही नहीं थी और उसको तरजीह दे दी उन तमाम लोगों के ऊपर जिनकी अनाउंसमेंट परफेक्ट थी, और हमने मेंबर रसूल ने भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नहीं, हम ज़बान पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हम खिताबत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बाकी किस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जिस पर अल्लाह के रसूल ने इसरार किया था कि इस पर नहीं करना। मेंबर कर्ज कर दिया, अब इसको लेकर आप तमाम अपने माशरती इदारों पर चले जाएंगे, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, अपने तमाम इदारों पर चले जाइए, कितनी दफ़ा ट्रस्टीज के इंतखाब में तकवा और परहेज़गारी सोचा है, कितनी दफ़ा सोचा है मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारों के इंतखाब में कि तकवा और परहेज़गारी का ख्याल करें। हमने सिर्फ एक बात सोची है, इतना चालाक हो कि लोगों को डील कर लें, बस। जब हम ये कर चुके होंगे तो कौम बचेगी, अब कौम बचेगी कैसे, बचेगी और क्यों बचे? आप बर्फ रख कर हरारत लेना चाहते हैं, आग रख के ठंडक लेना चाहते हैं, अल्लाह की किस कानून के अंदर जो होगा जो हम चाह रहे हैं? हमने अल्लाह की कवानीन पर कॉम्प्रोमाइज करनी है, क्योंकि मगरब ने हमारे लिए कुछ उसूल तय करके दिए थे, उनकी ज़िंदगी इससे बनी थी, मस्नूई ज़िंदगी जिसको उन्होंने तरक्की कहा था, तो हमने समझा हमारे लिए भी यही उसूल है तरक्की के, उन्होंने इस तरह बनाए थे, उनको फिल्में बनानी थी, उन्होंने उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे, आपने मुअज़्ज़िन बनाने थे, आपने खतीब बनाने थे, आपने ड्रामे थोड़ी बनाने थे, आपके स्टैंडर्ड्स अल्लाह के रसूल ने कुछ और बना के दिए थे, क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? और जब कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो कौम के साथ यही होगा जहां पे इस वक्त हम पहुंचे हुए। ये जो आप हर चीज को अपसाइड डाउन देख रहे हैं, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, इसकी कोई कोई वजह नहीं थी, खुदा ने ये कर दिया। खुदा क्यों किसी कौम के साथ दोस्ती बिला वजह में और दुश्मनी बिला वजह में करेगा? मैं 3 दिन हो गए मुसलसल इस बात पर इसरार कर रहा हूँ, खुदा का किसी कौम के साथ कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि वो कौम अच्छी करे या बुरी करे, हम अच्छा करेंगे, नहीं है ऐसा कोई उसूल। ज़ाब्ता ये कहता है कि अगर कोई कौम अच्छा करेगी खुदा उसके साथ अच्छा करेगा, अगर कोई कौम बुरा करेगी खुदा उसके साथ उस बुराई को सामने ला के रख देगा। खुदा तआला फरमाते हैं अगर तुम पलट गए इन उद तुम उदना, अगर तुम पलट गए तो हम पलट जाएंगे, नहायत ये तो खुदा के पलटने से काम नहीं रुकेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे नऊज़ुबिल्लाह ताला। ऐज़ाने मोहतरम, हमें कहीं पे जाके मामले को सही करना पड़ेगा, अगर हम ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है, हम लोग रियलाइज कर पा रहे हैं कि हमसे कुछ गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि इंसान का जो टेस्ट है ये चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, और सोसाइटी का टेस्ट चेंज होने में जाहिर है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और ख़ासकर उस टेस्ट को एक्सेप्ट करने में जो शुरू में तल्ख भी लग रहा है, जिसमें कड़वाहट भी नज़र आ रही है, उसको एक्सेप्ट करने में तो जाहिर है बहुत देर लग जाएगी। हम ऐसा दरअसल इशू ही है, मेयार पे आ जाइए, मेयार पे आ जाइए। अलबत्ता अब मैं एक तशरीह करता चलूँ कि कहीं बाद में इस पर एतराज़ ना हो जाए, क्या इसका ये मतलब ये है कि हमने हर मेंबर पे बैठने वाले में गलती की है? नहीं है। इसका मतलब ये कि हमने हर ट्रस्टी के मामले में गलती की है? नहीं है सर। इसी गलत सोसाइटी के अंदर अच्छे लोग मौजूद हैं, और शायद उन्हीं की वजह से ये बचा बुचा निज़ाम चल रहा है कि बिलाखिर कुछ अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं कि जो अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देते हैं, माशी की परवाह नहीं कर रहे, जो भी होता है झेल लेते हैं, अपने काम को कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कहना चाह रहे कि हमने 100% गलतियाँ की हुई हैं, नहीं 100% गलतियाँ नहीं की, 100% गलतियाँ की तो ये भी होता जो इस वक्त बाकी रही है, लेकिन हाँ ये समझ में आती है बात कि ज़्यादातर गलतियाँ की हुई, ये समझ में आता है ज़्यादातर गलतियाँ की हुई, और अब इसका जो संभालने का तरीक़ाकार होगा वो ये कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स सही करने पड़ेंगे, वो जो मसनूई स्टैंडर्ड मादी दुनिया ने हमें दिए हैं उन स्टैंडर्ड से निकल कर जो इलाही निज़ाम ने स्टैंडर्ड्स हमें दिए हैं उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उन पर मेहनत करेंगे और सबसे पहले अपने ऊपर मेहनत करेंगे। आप अपने अंदर टटोलने की कोशिश कीजिए, आपको अपनी किस अचीवमेंट पर सबसे ज़्यादा खुशी होती है, अपना एनालिसिस खुद कीजिए। कहते हैं हासिबू कब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब खुद ले लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, खुदा हिसाब सब लेगा। अपना हिसाब ले लें, मेरे स्टैंडर्ड्स क्या है, मुझे अपनी औलादों में से किस औलाद को देखकर ज़्यादा खुशी होती है, मैं अपने ख़ानदान में किस फर्द को ज़्यादा एहतराम की नज़र से देखता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में किन उसूलों के ऊपर किन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा वक्त और रिसोर्सेज लगाए, इन सबको देते रहे मुझे और पता चलना शुरू हो जाएगा कि हम कहाँ करें। और ये वो जगह है जहाँ हमें ताकत के साथ अहले बैत से नुसरत मांगनी पड़ेगी कि अगर वो नुसरत ना दें और मदद ना करें तो हम इस रास्ते को नहीं समझ पाएंगे। ये पुल सरात है, ये पुल सरात है, बात से ज़्यादा बारीक है, ये पुल सरात है। आप आसानी से नहीं देख पाएंगे कि मेरे और आपके सारे स्टैंडर्ड सही हो जाए, नहीं आप बार बार देखेंगे कि नहीं ये जो काम किया ये गलत स्टैंडर्ड के तहत किया, अच्छे स्टैंडर्ड्स में इसको नहीं आना चाहिए था, अपना जायजा लेते रहे, तब आप अपनी ज़िंदगी में असली कामयाबी असली कमाल इसको ढूंढ पाएंगे कि वो जो मेरी ज़िंदगी का वाकई कमाल है वो कमाल है असल में क्या है। आप ज़माने के इस फेरे से बाहर आइए, ये जो इस वक्त की फ़िज़ा है इससे बाहर निकलिए, क्योंकि फ़िज़ा मसनूई है, इस मसनूई फ़िज़ा ने मसनूई इंसानों में तब्दील कर दी, इससे निकल कर दीन के उस असास से नज़दीक आइए जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। तरीक़ाकार ये होगा कि 1400 साल के फासले को ख़त्म करें और मासूमीन अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को रख कर पूछें इनकी नज़र में मैं क्या हूँ, तब हमें समझ में आएगा कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ पहुँचना चाहिए। और अल्लाह का एहसान है कि मसलन अहले बैत का जिक्र मजालिस की सूरत में हमारे अंदर मौजूद है कि बार बार उनकी शख्सियतें हमारे स्टैंडर्ड्स में करेक्शन दे रही होती हैं कि देखो असल स्टैंडर्ड ये था। और अजीब बात यह कि हम वाकई करबला के मानने वाले हैं और हम स्टैंडर्ड्स ना सीख पाए, ये बहुत अजीब बात है। आया वाकई करबला में स्टैंडर्ड्स नहीं दिए थे क्या, मेयार नहीं दिए थे? यानी जब हम वाकई करबला पे पहुंचते हैं तो अचानक हमारा मेयार बहुत बुलंद हो जाता है, तो हम उस इंसान को बुरा कहते हैं कि जो सही तो शुहदा से कहता है कि आप शमशीर ले लें और घोड़ा ले लें मेरी जान ना मांगे, लेकिन जब खुद दुनिया में शमशीर और घोड़े देकर दीन को खामोश करने की कोशिश करते हैं तो दर्द नहीं कर पाते कि तो हमने वही कर दिया जिसकी हम मजम्मत कर रहे थे, ये हम क्यों नहीं मान पा रहे। हम करबला में आते हैं तो स्टैंडर्ड को कितना हाई देखते हैं, कि वहाँ कोई उज़र नहीं है। अगर शबे आशूर सैयद शुहदा के असहाब चले जाते तो माजूर थे, उनको कोई इश्काल नहीं था, उनको कोई एतराज़ नहीं कर सकता था, सैयद शुहदा के साथ चले जाते। इंसान दीन के पीछे क्यों जाता है? दीन के पीछे इसलिए जाता है कि इसमें कामयाबी मिलेगी, इसमें कमाल मिलेगा। क्या कमाल चाहिए? जन्नत चाहिए। सैयद शुहदा फरमा रहे थे, मैं मालिक की जन्नत हूँ, मैं जमाना जन्नत का सरदार, मैं जमानत देता हूँ तुम्हारी जन्नत कहीं नहीं जाएगी, मैं जन्नत पर मिलेगी, जाना चाहते हो जाओ। उसके बाद सैयद शुहदा ने एहसास किया, कोई नहीं गया, मैं तुम डर रहे होगे कि तुमने मेरे हाथ से बैत की थी कि मेरी जान दोगे, तो मैं आज सबसे बैत उठा देता हूँ, बैत ख़त्म कर दूँ। हर इंसान आज़ाद है, जाना चाहता है यहाँ से चला जाए। किस स्टैंडर्ड के तहत ये लोग बैठे रहे, किस मियाद के तहत बैठे रहे? ना जन्नत की तरफ गा रहे हैं, ना उसूलों की कोई बंदिश इनके ऊपर थी, आया सिवाय ये कि ये मादर हुसैन के सामने सुरखुरू होना चाहते थे, सैयद शुहदा की वालदे माजदा के सामने सुरखुरू होना चाहते थे। सिर्फ यही मैं यार समझ में आ रहा है, यानी ये लोग न जन्नत की तरफ जा रहे हैं, ना उसूलों की कैद के अंदर है। ये लोग सिर्फ एक बात जानते हैं कि ये नवासे रसूल है, ये फर्जंद जहरा है, इसका साथ छोड़ना मुमकिन नहीं। ये लोग आशिकान रसूल है, ये लोग दर अहले बैत के आशिक हैं, तसव्वुर नहीं कर सकते कि यहाँ से हटकर भी जिंदगी गुजारना मुमकिन है। लिहाजा अल्लाह ने उनको इज्जत दी, अल्लाह ने उनको सरबुलंदी दे दी, सैयद शुहदा ने काम को आसान कर दिया। एक एक सहाबी को बताते थे, तुम यहाँ गिरोगे और जैसे ही गिरोगे तुम्हें यह मकाम मिलने वाला है। हर एक के लिए गिरना आसान हो गया, हर एक के लिए जाना आसान हो गया। आप खुद तसव्वुर कीजिएगा, एक दफा एक लश्कर लश्कर से लड़ता है तो 20 आदमी यहाँ पर, फर्ज करो 2000 आदमी वहां पर, एक दफा एक तन्हा आदमी हजारों के सामने जाता है, और वो तन्हा आदमी जो जा रहा है, जिन लोगों के सामने जा रहा है वो वहशी दरिंदे हैं, एक शमशीर नहीं मारते। शबीह रसूल के लिए मुस्तनद रिवायत, शबीह रसूल के लिए मुस्तनद जुमला, फ़क़तलूहु इरबन इरबा, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मारा है। शबीह रसूल और इन लाइनों के दरमियान वो लोग भी थे जो जानते थे कि ये शबीह रसूल है। फ़क़तलूहु इरबन इरबा, 1400 साल के बाद मेरा और आपका जैसा पढ़ने और सुनने वाला सुनता है, शबीह रसूल के जिस्म के टुकड़े थे तो हालत ये है, हुसैन खड़े देख रहे हैं, मेरा शबीह रसूल टुकड़े हो गया। सब इम्तिहान होना चाहिए, सही शोधा ने कठिन इम्तिहान दिया होगा कि जब अपने फर्जन को टुकड़े हो गए देखा, और अगर इम्तिहान का जिक्र है तो नहीं मालूम कौन सा इम्तिहान सख्त है। एक अली अकबर के लाशें को देखें, कासिम के पामाल में भी लाशें को देखें, या सैयद सज्जाद बाप के सर को लेजे में बुलंद देखें, नहीं मालूम कौन सा इम्तिहान सख्त कि मौला सैयद सज्जाद ने सैयद साबरी का लकब हासिल किया, मैदान कर्बला से निकल कर कूफा और कूफा से शाम तक इन मसाइब को कैसे झेला है। सिर्फ जिंदान शाम के अंदर उस बच्ची का दफन किया जाना अभी अकबर की लाश से कम नहीं है। बिनते हुसैन सैयद शुहदा की साहिबजादी जिंदान में रोते हुए जान दे दे, और सैयद सज्जाद इमाम बीबी सैनों के बारे में क्या कहेंगे।
کہ جب بنت رسول بنت سید الشہداء دنیا سے رخصت ہونے لگتی ہیں ایک خواب دیکھتی ہیں, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس روتی ہوئی بچی کے نزدیک آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ تم رات کے وقت میں کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے بابا تشریف لائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم جلد ہمارے پاس آنے والی ہو, جلد آ جاؤ گی. یہ ایک خواب منقول ہے اور ایک اور خواب جو منقول ہے اسی عظیم شان سید الشہداء کی صاحبزادی سے کہ ایک موقع کے اوپر خواب دیکھیے ہیں کہ اماریاں اتر رہی ہیں, اس کے اندر خواتین تشریف لائی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ یہ خواتین کون ہیں, اور کوئی بتاتا ہے کہ یہ حوا ہیں, یہ حضرت آسیہ ہیں, یہ حضرت مریم ہیں, اور مخدرات تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں ان کے ساتھ بی بی خدیجہ بھی تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اور خاتون تھیں جو گریہ کر رہی تھیں اور وہ چاروں ان کو تسلیاں دے رہی تھیں, اس کے لیے یہ پانچویں خاتون کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ بنت رسول اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ تشریف لاتی ہیں سید الشہداء کی صاحبزادی کے پاس اور ایک جملہ پوچھتی ہے جو ہم لوگوں کے لیے عجیب ہے.
تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.